श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्री गौरांग महाप्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक बार सब लोग बड़े प्रेम से पुकारिए, बोलना नहीं है, पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ शुरुआत में ही जिस मंदिर में हम बैठे हैं, गोपीनाथ गौड़िया मठ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, श्री नरसिंहदेव भगवान का ये मंदिर के जो भक्त हैं उन सबके हम आभारी हैं। आप लोगों ने हमको यहाँ पर बैठने का मौका दिया और सुंदर स्थान दर्शन करने के लिए और कथा करने के लिए दिया। सब लोग 3 बार हरि बोल बोलकर आपका धन्यवाद अदा कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हो। प्रतिध्वनि भी आ गया आपका। तो हमारी इस परम पावन पुण्यदायी यात्रा का आज का आखिरी दिन है। तो जैसे ज्योति होती ना, वो शुरू में एक शक्ति से जलती है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो बहुत बड़ी हो जाती है। उस तरह से आपका भी उत्साह और आध्यात्मिक उत्सुकता, ईगरनेस जो है, एकदम परम सीमा पर आना चाहिए आज, पराकोटी की। तो सब लोग हम महोदधि के किनारे बैठे हैं, आपने आते हुए देखा ना, यहाँ से इस दिशा में 2 मिनट के अंतर पर समुद्र है, महोदधि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस समुद्र को महातीर्थ महोदधि का उपमा दिया है। जिस समय उन्होंने यहाँ पर श्रील हरिदास ठाकुर का समाधि स्थापन किया, श्रील हरिदास ठाकुर की समाधि करने के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को अपने हाथ में दिव्य कर कमलों में उठाकर वो समुद्र में ले गए। बहुत हजारों लोगों की संख्या के हरिनाम संकीर्तन के जुलूस में, और फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर को समुद्र में स्नान कराया और उन्होंने कहा कि हरिदास ठाकुर का तिरुभाव का लीला जिन्होंने भी देखा है, जिन्होंने भी आगे जाकर उसका श्रवण करेंगे, जो भी इसका चिंतन करेंगे, जो भी हरिदास ठाकुर का तिरुभाव के बारे में सोचेंगे, वो सब लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। इतना भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे। वो हमने उसकी नाटिका प्रस्तुत की थी, उस आखिरी जो सीन था जब हरिदास ठाकुर जी के शरीर को चैतन्य महाप्रभु ने अपने शरीर में लिया, अपने हाथ में लिया, और वो सब भक्तों के पास पास जाकर इस भाव से बोल रहे थे कि सब जितने भी श्रोता गण थे, जितने भी प्रेक्षक गण थे, उनके रोमांच खड़े हो गए। महाप्रभु जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों पर। तो हरिदास ठाकुर की समाधि के पश्चात उन्होंने इस समुद्र को ये उपमा दी। लेकिन और भी इसके बहुत कारण हैं कि ये महोदधि यानी महातीर्थ क्यों हैं। एक तो जितनी भी नदियां हैं वो बहुत सारी नदियां इसमें प्रवेश करती हैं और हर नदी पवित्र नदी होती है। हर नदी के किनारे पे भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं, कुछ ना कुछ उनके भक्त आकर लीला करते हैं और हर नदी के किनारों को भगवान ने पवित्र स्थान का दर्जा भी दिया है। जितना किलोमीटर हजारों किलोमीटर नदी बहती है उसके सारे किनारे जितने होते हैं वो पवित्र तीर्थ होते हैं, संत लोग स्नान करते हैं उसके अंदर और ये सब करके वो समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए भी महातीर्थ है। और आपको सुनकर बड़ी खुशी हो गई कि आप जानते हैं कि श्री राजा इंद्रद्युम्न महाराज नीलमाधव का दर्शन करने के लिए इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन जैसे ही वो भुवनेश्वर आए तो उनको पता चला कि नीलमाधव अंतर्धान हो चुके हैं, तो वहीं पर बेहोश हो गए, वो बहुत दुखी हो गए। तो उस समय शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि आप चिंता मत करना, अपना प्रयास जारी रखना, अपनी यात्रा जारी रखना, निश्चित रूप से आपको भगवान के दर्शन होंगे। फिर शंकर भगवान अभी सबके सामने उन्होंने शिव जी को दर्शन दिया, मतलब नारद मुनि भी साथ में हैं, राजा इंद्रद्युम्न है, उनकी पत्नी है, सब प्रजा है, सब दर्शन कर रहे हैं। फिर शंकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और फिर शंकर भगवान वहीं पर अकेले नारद मुनि को दर्शन देते हैं, वो भी केवल नारद मुनि को दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ भी केवल उनको ही सुनाई पड़ रही है। वो क्या कहते हैं, आप नरसिंह भगवान का विग्रह यहाँ पर स्थापन करना। तभी वो भुवनेश्वर से आगे निकलकर आज का जहाँ इंद्रद्युम्न सरोवर है उस जगह पर आ गए थे। उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान का विग्रह आप स्थापन करना और इनके ही समक्ष आप राजा इंद्रद्युम्न से 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराना। तो फिर वो अंतर्धान हो गए नारद मुनि से भी और नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न महाराज को ये कहा कि आपको यहाँ पर 1000 अश्वमेध यज्ञ करना है। और नारद मुनि को शंकर भगवान ने ये भी कहा कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होंगे। तो ये वहीं पर राजा इंद्रद्युम्न ने अपना पूरा एक मिनी सिटी बसाया, छोटा शहर बसाया, जिसमें सब साधुओं के लिए, पुरोहितों के लिए कुटिया बनाई, अपने लिए महल बनाए और स्टोर हाउस बनाए, गाय के लिए जगह बनाई, ऐसे करके पूरा यज्ञ वेदी बनाए, हजारों कुंड बनाए, उसमें बहुत भव्य व्यवस्था की। और अवंतीपुर से जब वो निकले थे तो लाखों गायों को लेकर भी निकले थे, उनको पता था कि जो भक्त होते हैं भगवान के, राजा होते हैं, वो जगह जगह पर मौका देखकर गायों का दान करते रहते हैं संतों के लिए। तो हमने कैसे भी यात्रा में जाते हैं तो 20 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट का गट्ठा लेके आते ना, ताकि सबको देते रहें दक्षिणा में, और देना भी चाहिए। हाँ, किसी भी यात्रा में आने के बाद में दान दक्षिणा के बिना यात्रा सफल नहीं होती है। कभी कभी हमारे संस्था को लोग दूषण देते हैं कि हम लोग दान नहीं देते, लेकिन तीर्थ यात्रा दान दिए बिना संपूर्ण नहीं होती। आप कितना भी प्रसाद पाओ, कितना भी दर्शन करो, कथा सुनो, जब तक FM 97 पे भी चल रहा है लेकिन सब लोग अंदर ही बैठे हुए हैं, नहीं सुनाई पड़ रहा आपको, तो FM 97 लगा दीजिए। हरे कृष्णा, जितने भी सीमित स्पीकर्स हैं, हरे कृष्णा। तो क्या कह रहा था मैं, दान किए बिना आप यहां से लौट कर मत जाइए, क्योंकि दान देने से वो जो होती है ना संचय प्रवृत्ति, आसक्ति की प्रवृत्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। जब हम देते हैं तो जो हमारे पास है उसकी आसक्ति कम हो जाती है, उस धन का जो नेगेटिव परिणाम है वो भी नष्ट हो जाता है। धन का नेगेटिव परिणाम क्या होता है, धन संचय करने से कली का प्रवेश होता है और कली का प्रवेश होने से कलह और दंभ यानी झगड़ा और झूठ मूठ का दिखावा, ये दोष निर्माण होते, बेवजह के झगड़े निर्माण होते। इसलिए धन संचय नहीं करना चाहिए, धन संचय केवल करना है तो भगवान की सेवा के उद्देश्य से ही करना चाहिए, बुढ़ापे के लिए करना चाहिए, इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं, रोग का इलाज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा धन संचय करना बहुत घातक है। धन संचय करने से झगड़े बढ़ते हैं, माया का प्रभाव बढ़ता है, त्रिगुणों का दोष बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति को भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है उनको दान धर्म करने का अभ्यास करना चाहिए। तो राजा इंद्रद्युम्न अपनी गायों को लाखों को लेकर आए थे वहां पर, और उन्होंने वहीं बैठकर 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। उसके पहले नारद मुनि ने वहां पर नरसिंह भगवान का स्थापना किया। उसमें दो मत प्रवाह है, मैं पहले बता देता हूं आपको, क्योंकि आज आप उस नरसिंह भगवान का दर्शन भी करने वाले हैं। एक मत प्रवाह ऐसे है कि शिव जी ने नारद मुनि को कहा कि जाओ नरसिंह भगवान को लेकर आओ, तो इंद्रद्युम्न राजा से 4 दिन की छुट्टी मांगकर नारद मुनि चले गए और नरसिंह भगवान को लेकर आए और स्थापना किया। ये एक मत प्रवाह है, और उनके सामने फिर यज्ञ संपन्न किए। दूसरा मत प्रवाह यह है कि जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किए तो यज्ञ से ही आदि नरसिंह यज्ञ नरसिंह प्रकट हो गए। यज्ञ नरसिंह भगवान की उनकी विशेषता यह है कि उनके दो मुख थे, एक आगे और एक पीछे, और पीछे का मुख जो है वो आज किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, वो बहुत उग्र और भयंकर है। उसका दर्शन, कहते हैं उसका दर्शन झेल पाना भी मुश्किल है, यू कैनॉट टेक द दर्शन, इतना वो उग्र है। और हमें जो दिखाई पड़ता है, आज दिखाई पड़ेगा, वो शांत नरसिंह है जिसके गोद में लक्ष्मी देवी बैठी हुई है। तो ये यज्ञ नरसिंह बताता हूं आपको। आदि देव भी कहते हैं उसको, आदि नरसिंह, आदि देव, यज्ञ नरसिंह। तो इस प्रकार से ये नरसिंह भगवान का मंदिर का भी मार्जन चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जब उन्होंने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया तो इस मंदिर का भी मार्जन किया। इसी नरसिंह भगवान के थोड़ा आगे जाएंगे तो गुंडीचा मार्जन करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ विश्राम किया वो जगह भी है, उधर ही है, आपका दर्शन हो सकता है आज, चैतन्य महाप्रभु विश्राम स्थली। और उसी के आगे छोटा सा एक मंदिर है, उसमें जो बहुत सारे पात्र निकाल कर गुंडीचा मार्जन किया था, मट्टी के भांड, वो बहुत फूटे भी जल्दी जल्दी में बहुत सारे, तो भांडा भांडा भांगा स्थली कहते हैं उसको, तो वो भांडे का टुकड़ा भी वहाँ पर एक रखा हुआ है उस समय का। एनीवेज तो डाइवर्शन हो गया। तो 1000वां यज्ञ जब संपन्न हुआ तो आप जहाँ बैठे हैं ना, इसी के थोड़ा सा आगे एक कुआं है, शायद इधर ही कहीं, आप पूछेंगे तो पता चलेगा आपको, मुझे लास्ट टाइम दर्शन नहीं हुआ। उसका नाम है बंकी मुहाना, और वो बंकी मुहाना एक समय पर नदी थी जो इस सागर में मिलती थी, और जिस जगह पर बंकी मुहाना नदी सागर में मिली उसी समय 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के पश्चात दिव्य दारू ब्रह्म प्रकट हुआ था। हरिवो, क्योंकि जैसे ही वो 1000वां यज्ञ समाप्त होने जा रहा था तो बहुत ही दिव्य सुगंध सब जगह फैल गई। सब जगह पर जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में सब जगह पर दिव्य सुगंध फैल गई, और समुद्र के ओर से दिव्य सुगंधमयी हवा जमीन की ओर बहने लगी, और समुद्र की ओर संध्या का समय होने पर भी समुद्र के अंदर बहुत दिव्य प्रकाश, जैसे कि हजारों करोड़ सूर्य जो है एक साथ प्रकाशित हो रहे हों, इस प्रकार समुद्र में तेज प्रकट हुआ। तो जो लोग यहां पर थे वो इतने इतने भाव विभोर हो गए देखकर, उन्होंने देखा कि ये सारा दिव्य प्रकाश जो है एक भव्य दिव्य दारू ब्रह्म से आ रहा है, एक लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हैं उसको आप, दारू ब्रह्म, बहुत विशाल, स्वयं प्रकाशित, अनंत प्रकाशित, और ये भी समझ रहे थे कि उसी की ओर सुगंध आ रही है, उसी की ओर से सुगंध आ रही है। तो भागकर चले गए, कहां पर चले गए, जहां पर आज गुंडीचा मंदिर है वहां पर ये यज्ञ हो रहे हैं, वहां पर भाग के जाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि समुद्र में कुछ दिव्य वस्तु प्रकट हो गई है। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए हैं, तो इंद्रद्युम्न महाराज तुरंत भाग जाते हैं, वहां पर हवा की गति से भागते हैं, और बंकी मुहाना नदी जहां पर समुद्र को मिल रही है वहां पर इस दिव्य दारू ब्रह्म का दर्शन करते हैं। फिर कई सैकड़ों हाथियों के बनाए हुए रथ से वो दारू ब्रह्म को रथ में सवार करके फिर वापस यज्ञ कुंड के पास लेके आते हैं। तो ये दारू ब्रह्म की प्राकट्य स्थली है जहां पर हम लोग आए, और यहां से फिर जब वो यहां वहां उन्होंने उस दारू ब्रह्म को रखा, उस समय विश्वकर्मा आए और विश्वकर्मा ने फिर इस दारू ब्रह्म से तीन विग्रह बनाए, चार विग्रह बनाए, चक्र भगवान, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। तो वो जगन्नाथ जी का जन्म स्थान भी है, आज जहां गुंडीचा मंदिर है, जिस वेदी पर इस तीन चार चार मूर्तियों को बनाया गया, प्रयोगशाला कह सकते हैं उसको आप। वो जब बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो 15 दिन तक वो अंदर रहे, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई काटने की आवाज़ आई, ना कुछ घिसने की आवाज़ आई, ना कुछ और किसी की आवाज़ आई। तो राजा रोज आकर उत्सुकता में देख रहा था क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन वो वादा याद आया कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था अगर आप मुझे व्यवधान करेंगे बीच में तो मैं उसी समय अदृश्य हो जाऊंगा। तो ये याद करते करते दोबारा लौट के जाते थे, फिर कान लगाते थे, फिर लौट के जाते थे। फिर 15 दिन के बाद में गुंडीचा देवी ने कहा अरे इतने वृद्ध है वो, आप भोजन देते हो, भोजन वहीं पड़ा रहता है, ना भोजन खा रहे ना अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, क्या गुजर गए क्या अंदर? वो हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, पता नहीं जीवन है कि नहीं है। तो 15 दिन के बाद में उनकी उत्कंठा जो है ना वो पराकोठी पे पहुंच जाती है, वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। तो जैसे कहा था वैसे ही विश्वकर्मा जी वहां से गायब रहते हैं। तो बहुत रोते हैं वो, बहुत 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 रोते हैं, मतलब कितना दुर्भाग्य हूं मैं, एक तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, फिर अता पता चला, फिर वो अंतर्धान हो गए, फिर उन्होंने कहा 1000 यज्ञ करो, वो भी किए, और अभी अंतिम समय पर मेरे क्या कहते हैं इम्पेशंस, असंयमी व्यवहार से अभी वो भी मूर्तियां जो बननी थी वो आधी बनी। फिर नारद मुनि दोबारा वहां पर आए और उन्हें फ्लैशबैक के रूप में नारद मुनि ने राजा को सुंदर कहानी सुनाई, जो आपने कल महाराज की कथा में सुनी होगी, उसमें रोहिणी देवी वृंदावन की कथा कह रही है, बंद कमरे में, बंद महल में 16108 रानियां बैठी हुई हैं, रोहिणी ऐसे बैठकर व्यास पूजा व्यासपीठ पर कथा कर रही है, देवकी जी भी वहां पर बैठी हुई है, क्योंकि देवकी जी को वही भगवान के बाल लीला का दर्शन नहीं हुआ ना, वो सीधे 11 साल की उम्र में वहां पहुंचे, कंस का वध करने के बाद में मिले उनको, तो बाल लीलाओं का दर्शन श्रवण कुछ भी नहीं हुआ, तो वो भी वहां पर बैठी हुई है, और सारे दरवाजे बंद है, एक दरवाजे पर सुभद्रा माई खड़ी है, इस उम्मीद से कि जहां पर भी कृष्ण भगवान की ब्रज लीलाओं का वर्णन होता है या किसी भी लीलाओं का वर्णन होता है वहां पर स्वयं कृष्ण और बलराम जी आ जाते हैं। तो वो आएंगे तो फिर वापस कहेंगे, क्या कहेंगे, दारुक रथ लगाओ, अभी हम वृंदावन जाएंगे। एक डर था उनको कि जैसे ही बचपन के लीलाओं की और स्थानों की याद आएगी, ब्रजवासियों की याद आएंगी, तो उससे प्रेरित होकर वह तुरंत रथ जोत कर सीधे वृंदावन चले जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात पर रोहिणी हमेशा उनका प्रस्ताव टाल देती थी कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हर टाइम वही करते थे। इस बार ये सुझाव निकालते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वो आते हैं ना तो सुभद्रा देवी को खड़ा किया है ना, वो खड़े रहेगी और दूर से देखेगी, दूर से क्षितिज के पास भी कृष्ण बलराम का दर्शन होता है तो हम लोग तुरंत खटखटाएंगे दरवाजा और हम सब भाग जाएंगे वहां से जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग एक योजना बनाते हैं और भगवान की कुछ दूसरी ही योजना होती है। उनके स्क्रिप्ट में जो उन्होंने लिखा था ना स्क्रिप्ट, कैसे कैसे होगा, उसमें ये लिखा था कि सुभद्रा जी बेहोश हो जाएंगी उस स्क्रिप्ट में ये आइटम नहीं था, पता ही नहीं था उनको। सुभद्रा जी कुछ ही देर में, क्योंकि उसको भी उत्सुकता है ना कि ब्रज में क्या हुआ, और वो भी रोहिणी देवी कह रही है, प्रत्यक्ष साक्षी है वो, वात्सल्य माधुर्य सभी लीलाओं के साक्षी है वो, उनके मुख से भगवान की बहुत ही उत्कट वात्सल्य भाव वाली माता है वो सुना रही है तो उसको भी उत्सुकता होगी कि नहीं, बेचारी को बाहर खड़ा कर दिया तो भी कान लगा के सुन रही है, ऐसे ही सुनती है वो भी वहां पर बेहोश भाव विभोर होकर गिर जाती है। फिर निश्चित रूप से श्री कृष्ण बलराम जी वहां पर आते हैं, देखते हैं अपनी बहन को क्या हो गया, तो उनकी भी उत्सुकता बढ़ती है, वो भी कान लगाते हैं। और बहुत सारे अनंत प्रकार के शरीर के अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनके। हम लोग खाली एंड स्टेज जानते हैं जो जगन्नाथ जी का रूप है, लेकिन बीच में जो कथाएं सुनते हैं ना, वो कथाओं को सुनने के समय उनके अलग अलग प्रकार के विकार, कभी लंबे हो जाते हैं, कभी बंडल हो जाते हैं, कभी अश्रु बहाते हैं, कभी गदगद हो जाते हैं, कभी रोमांच खड़े होते हैं, कभी कदम फूल की तरह बन जाते हैं रोमांच होकर, ऐसे अनंत विकार होते हैं उनकी। लगातार परिवर्तन हो रहा है उनके शरीर में और वो कथा सुनते जा रहे हैं, कथा सुनते जा रहे हैं। जब चरम ब्रज के विरह भाव में वो आते हैं तो महाभाव को प्राप्त करते हैं और फिर गिर जाते हैं वहां पर। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मुस्कान, कान तक फैली हुई है, पैर अंदर चले गए, हाथ सीधे हो गए, पंजे नष्ट हो गए, ऐसे विचित्र स्वरूप है उनका। ऐसे अद्भुत स्वरूप में जिसको महाभाव कहते हैं, उस महाभाव को जब उन्होंने प्राप्त किया तो वो गिर गए दोनों। तो नारद मुनि ने दर्शन किया, हवाई मार्ग से जा रहे थे वो, और अचानक देखा कि ये तो अद्भुत स्वरूप है, क्योंकि भगवान के परम भक्त है इसलिए ये अद्भुत रूप में पहचानने को न आते हुए भी वो तो हृदय से पहचान गए कि हमारे ठाकुर जी है। लेकिन उनके हृदय में भगवान का अनंत प्रेम पहले से ही स्थित होने के बावजूद भी उन्हें इस समय इस स्वरूप का दर्शन करते समय बहुत ही अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ, जिस प्रेम का उनको भी पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। आप कहेंगे प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में क्या होता है, लेकिन प्रेम में भी अनंत वैरायटी होती है। महाभाव भी 8 प्रकार के प्रेम के अलग अलग प्रकार से बनता है, प्रेम के कई प्रकार होते हैं। तो नारद मुनि को एक अद्भुत प्रकार के प्रेम का अनुभव हुआ तो वो नीचे उतर आए और उन्होंने भगवान को स्पर्श किया। भगवान को स्पर्श करते भगवान पूर्ववत हो गए, पहले जैसे हो गए, बाह्य चेतना में आ गए। तो नारद मुनि ने कहा कि आपका यह अद्भुत रूप देखकर मेरे मन में इतना प्रेम का अनुभव हुआ, ऐसा अद्भुत प्रेम का अनुभव हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन एक विशेष बात सब लोग नोट कीजिए, हम लोग जब ये एंजॉय करते हैं ना बहुत, तो एंजॉयमेंट में बहुत चीज भूल जाते हैं हम लोग। अरे किसी को बोला था 11 बजे पहुंचना है, किसी को बोला था कि मैं आपको इतना सारा सामान पहुंचा दूंगा 11:30 बजे, हाँ सब भूल जाते हैं। और बहुत दुख होता है ना कभी किसी को, बहुत सदमा पहुंचता है, तभी भी हम सब भूल जाते हैं कि हमने किसी को क्या वादा किया था। इतना कि उसको कहते हैं ओवरवेलमिंग, भावातिरेक कहते हैं उसको, भावातिरेक के प्रभाव में हम लोग सब भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन संत लोग कितने भी भावातिरेक में आ गए, कितने भी भाव विभोर हो गए, करुणा का स्वभाव उनका नष्ट नहीं होता है ना, वो भूल जाते हैं। करुणा संत लोगों का स्थायी भाव है, सब बेस लाइन नेचर। तो इतना भाव विभोर होकर उन्होंने आनंद का अनुभव किया, लेकिन बद्ध जीवों के प्रति करुणा को नहीं भूले वो। भगवान से कह रहे हैं कि कितना अद्भुत अनुभव हुआ उनको, लेकिन तत्काल तुरंत बाद क्या बोल रहे हैं, भगवान मुझे वरदान दीजिए आप कि इसी रूप में आप भौतिक जगत में प्रकट हो जाओगे, ताकि इतने अनंत जीव यहां पर दुख भोग रहे हैं आपको भूलकर, कृष्ण भूलिया जीव, हाँ वो सब जीवों को केवल आपके दर्शन मात्र से प्रेम का अनुभव होगा जैसे मुझे हुआ है। इसलिए मुझे विश्वास है इस बात का कि जैसे मुझे प्रेम में अपने आप स्वतः ही, मैंने कुछ किया नहीं है, पहले देखा आपको तो ये अद्भुत अनुभव हुआ, तो जन सामान्य को भी यह अनुभव होगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए आप मुझे वादा कीजिए कि आप आएंगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। सब लोग हृदय से हरि बोल बोलकर नारद मुनि को धन्यवाद दीजिए। कारण क्या उसका, क्योंकि नारद मुनि ने भाव विभोर होकर अगर ये भूल गए होते हमारे प्रति करुणा के विषय में, तो जगन्नाथ भगवान यहां पर नहीं आते। संतों के माध्यम से ही भगवान आते, याद रखना इस बात को। बिना संत के हम भगवान को ना पहचान सकते हैं, ना प्राप्त कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। संत जब कृपा करते हैं तो ही भगवान को भी भगवान के रूप में हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज अगर जगन्नाथपुरी यात्रा हम कर रहे हैं, इसके केंद्र स्थान में जगन्नाथ जी विराजमान है, तो ये सब नारद मुनि की असीम कृपा है, क्योंकि उस राइट टाइम पर उन्होंने भगवान से ये वचन मांगा, वरदान मांगा। और वो भगवान प्रथम यहां पर दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए थे। तो बहुत सुंदर सुंदर कहानी है। जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत भगवान हैं। ऐसा क्षेत्र जो है वो, जैसे हम अभी आप बोलेंगे हम जब वृंदावन जाते तभी भी आप ऐसा कहते हैं वृंदावन भी बहुत अद्भुत धाम है, तो मायापुर यात्रा करेंगे तो मायापुर में भी यही कहेंगे मायापुर बहुत अद्भुत धाम है क्योंकि वास्तविकता में भी ये अद्भुत ही धाम है सब। क्योंकि यहां पर वो भगवान, द्वारका वाले भगवान, ऐश्वर्य संपन्न भगवान, वृंदावन की याद में जगन्नाथपुरी में विरह में रह रहे हैं, ये भी अद्भुत बात है। वही भगवान राधा रानी का प्रेम क्या है ये समझने के लिए भक्त बनकर नवद्वीप में जन्म ले रहे हैं, वो भी अद्भुत बात है। और परम दिव्य धाम वृंदावन, जहां पर भगवान अपने हृदय का उत्कट प्रेम प्रकट करते हैं, अनन्य प्रकार की लीला प्रकट करते हैं, जहां पर भगवान के रूप में रहते नहीं है, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, सारे ऐश्वर्य को त्याग देते हैं और माधुर्य को अपने ऊपर लपेट कर पूर्णता से माधुर्य संपृक्त होकर सभी भगवान के अपने भक्तों के साथ में माधुर्य लीला के विविध प्रकार में आनंद लेते हैं, गोवर्धन धारण करते हैं, रास रचाते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो भी अद्भुत धाम है। और आनंद की बात यह है जगन्नाथपुरी, वृंदावन और मायापुर ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों सेम है। धाम अपराध में एक अपराध ऐसा है, इन तीन धामों को अलग समझना ये भी एक अपराध है। इसमें धाम का जो आपको लाभ होने वाला है वो नष्ट हो जाएगा अगर आप मन में भी सोचते हो कि ये अलग अलग धाम है। बाह्य दृष्टि से अलग है, लीलाओं की दृष्टि से अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन भाव दृष्टि से ये एक ही धाम है। जितना शक्तिशाली वृंदावन है, जितना शक्तिशाली मायापुर है, उतना शक्तिशाली जगन्नाथपुरी धाम भी है। अलग अलग भाव भगवान प्रकट करते हैं, खाली इतना ही फर्क है कि वृंदावन धाम में भगवान माधुर्य प्रकट करते हैं, वो भी प्राइवेट माधुर्य है, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो जो प्राइवेट माधुर्य है वो नवद्वीप में पब्लिक कर देते हैं, सब जन सामान्य के लिए उसको उपलब्ध करा देते हैं। और यहाँ की लीला विचित्र लीला है क्योंकि एक ही जगह पर दो दो बर ब्रह्म एक साथ लीला कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी लीला कर रहे हैं, जो कृष्ण से विरह में है, राधा का भाव लेकर कृष्ण से विरह में है वो यहाँ लीला कर रहे हैं, और जो कृष्ण राधा और ब्रजवासी के विरह में है वो जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ विराजमान है। और दोनों का आदान प्रदान भी होता है, कई बार हुआ है। तो ऐसे दो परम ब्रह्म एक साथ में आना बहुत मुश्किल है। रामायण में भी एक बार ऐसा हुआ था, परशुराम जी और प्रभु रामचंद्र का आमना सामना हुआ था, लेकिन वो अलग रस में हुआ था। एनीवेज कोई बात नहीं। तो अभी समुद्र किनारे पे और सुंदर लीला जो है वो इस प्रकार से है। हनुमान जी का यहाँ पर बहुत सुंदर लीला है, आप देख सकते हैं कि एक बार सुदर्शन चक्र जो है, अभी ये चक्र भगवान जो है ना वो बहुत भगवान के क्या कहते हैं अजेय अस्त्र है भगवान का। आज तक सुदर्शन चक्र को किसी भी अस्त्र ने पराजित नहीं किया है, और कहीं भी वो उनको छोड़ते ना तो वो अपने लक्ष्य को काट कर ही लौट के आते हैं। शिशुपाल को भी इन्होंने काटा था, ये जो नरकासुर है, मूर असुर है, उसके सात पुत्र है, इनको भी इन्होंने काटा था, बहुत लोगों को काटा है। लेकिन जब इंद्रजीत ने इनको छोड़ा राम लक्ष्मण पे, तो उनको प्रदक्षिणा करके लौट के आए थे क्योंकि वो उनके भगवान हैं। लेकिन होता क्या है कि इतना अजेय और पराक्रमी होने के बाद में थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। थोड़ा क्यों, बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऐश्वर्य ऐसी वस्तु है कि जब तक हम पूर्णता से भगवान की सेवा में नहीं लगे रहेंगे और ऐश्वर्य के साथ में, नहीं तो वो ऐश्वर्य आपको पर बाधा करेगा ही करेगा निश्चित रूप से। आप ऐश्वर्य होने के बाद में भगवान भावना भावित नहीं रहेंगे तो बिल्कुल ऐश्वर्य से अप्रभावित होंगे ऐसा नहीं हो सकता है, उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। तो थोड़ा थोड़ा सा गर्व चक्र को भी हुआ था, तो उसको हरण करने के लिए भगवान, देखो कैसे भगवान बहुत दयालु है, वो अपने भक्त के अंदर कभी भी अहंकार पैदा होता है तो करुणावश और प्रेम के वश तुरंत नष्ट करते हैं उसके लिए लीला करके। हाँ, तो उन्होंने चक्र से कहा कि पासी के जंगल में हनुमान जी आए हैं, मेरे परम भक्त हैं, पिछले युग में मैंने उनसे लीला किया है, वो मुझे मिलना चाहते हैं, जाके उनको लेके आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी को बुलाने के लिए चक्र जी गए और हनुमान जी के पास पहुंचे। वो जंगल में थे उस समय, पेड़ पे चढ़कर फलों का आहार ले रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो ठाकुर जी बुला रहे हैं आपको, और आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो बाद में कहते हैं कि आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, क्योंकि अपने वेग का उनको भी, वो अलग कहानी है, मैं मिक्सअप कर रहा हूँ उसको। एनीवेज तो चक्र जाकर उनको बोल देते हैं, तो वो निकल जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आएंगे बाद में। हनुमान जी आते हैं फिर जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी को मिलने के लिए। और आते ही हनुमान जी को ये बार बार बीच में आके रोकने लगते हैं। भगवान को मिलने के लिए उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन अहंकारवश उनको रोक रहे हैं बीच बीच में। जहाँ प्रवेश करने का कोशिश कर रहे हैं वहीं पर रोक रहे हैं उनको। तो हनुमान जी हाथ उठाकर भगवान को पुकारते हैं, हे जगन्नाथ, आपने मिलने को बुलाया है, आपका ही सेवक मुझे रोक रहा है, कृपा कीजिए मुझ पर। तो हनुमान जी के दो हाथ से वो पुकार रहे हैं भगवान को, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनके और छह हाथ तैयार होते हैं भगवान जगन्नाथ की दया से, और चार हाथ में चार चक्र पैदा होते हैं, सुदर्शन चक्र। और दो हाथ से वो पुकार रहे हैं, दो हाथ से जप कर रहे हैं, ऐसे आठ हाथ वाले जगन्नाथ हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो ये एक चक्र जो है वो चार चक्र वाले हनुमान जी को देखकर बड़े ही, क्या कहते हैं ना उसको, निस्तेज हो जाते हैं, और बहुत क्या कहते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं निस्तेज होने के साथ में। और फिर तुरंत हनुमान जी खुद आश्चर्यचकित होते हैं और रत्नम सिंहासन तक भगवान के पहुंच जाते हैं। तो फिर बहुत शर्मिंदा होते हैं सुदर्शन चक्र, और हनुमान जी बताते हैं कि ये चक्र ने मुझे रोका। तो वो जो चार ही चक्र हनुमान जी है उसका दर्शन जो है वो मंदिर के अंदर एक गेट के पास है, मुझे वो गेट का नाम याद नहीं है, लेकिन व्याघ्र गेट नहीं है वो, उस व्याघ्र गेट के आगे अश्व गेट है। तो अश्व गेट जो है अश्व द्वार, वहां पर चार ही चक्र हनुमान आज भी आप दर्शन कर सकते हो, अभी आज भी समय है आपके लिए, शाम को भी कर सकते हो। तो पुजारी को बोलेंगे, वो कपड़ा निकालेंगे, तो कंधे पर चार हाथ है, दो दो हाथ, दो टाइप, दो तरफ, और दूसरे दो नीचे हैं, और चारों हाथ में एक एक चक्र, चार चक्र विराजमान। तो जगन्नाथ जी बड़े नाराज हो गए सुदर्शन चक्र पे, उनको शाप दे दिया कि तुम्हारा चक्र का स्वरूप है ना, जिस पर तुम इतना गर्व करते हो, वो चक्र का स्वरूप नष्ट होकर तुम खंभे की तरह बन जाओगे जगन्नाथपुरी में, और मेरे बाई ओर पड़े रहोगे। तो अभी किसी को अपना अस्तित्व ही अगर अस्तित्वहीन कर दिया तो कितना दुख होगा, लाइक यू बिकम मिस्टर नथिंग नाउ। हाँ, चक्र थे काटने वाले, तो ये खंभा हो गए, क्या करेंगे खंभे से। तो बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत विनती किया उन्होंने, माफी मांगी। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको वरदान देता हूं कि यहां पर तो मैंने कह दिया वैसे ही होगा, आप स्तंभ के रूप में ही रहेंगे, लेकिन जहां जहां मेरा मंदिर होगा, मतलब यहां जगन्नाथपुरी में भी और विष्णु का जहां जहां विश्व में मंदिर होगा उसके ऊपर आपको चक्र के रूप में ही स्थापन किया जाएगा, नंबर वन। और नंबर टू, जो भी आपके दर्शन करेगा मेरे मंदिर के शिखर के ऊपर, वो मेरे ही दर्शन करने का लाभ प्राप्त करेगा। बोला श्री जगन्नाथ भगवान की। तो ऐसे हनुमान जी हमारे हर एक युग में उनके भगवान के साथ लीलाओं का सहभाग है, एवरीवेयर ही इज इन्वॉल्व्ड। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं ना समुद्र, कल आप कितना उनका लेटेस्ट रिपोर्ट सुना ना समुद्र का, समुद्र क्या करते हैं। हाँ, अभी मैं तो अभी बहुत दुबला हो गया हूँ, मेरा बहुत वजन लॉस हो गया है, पहले मैं बहुत मोटा था, और उस समय मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा करके बहुत जोश से समुद्र के अंदर गया था, तो 7-8 फीट की लहर ने मुझे ऐसा उठा के कई फीट दूर फेंक दिया, मुझे अभी भी याद है वो घटना, एक बॉल की तरह उठा के ऐसा फेंक दिया समुद्र ने मुझे, बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत कष्ट हुआ। तो ये समुद्र बहुत तूफानी है यहाँ पर, और बार बार वो जगन्नाथपुरी में आक्रमण करके जगन्नाथपुरी को पादाक्रांत करता था, इट यूज टू फ्लड द होल सिटी। तो त्राही त्राही करके सब जगन्नाथपुरी के वासी आ गए, जगन्नाथ के पास पुकारने लगे, भगवान कुछ कीजिए हमारे लिए, ये वरुण देव कुछ ज्यादा ही आतंक कर रहे हमारे ऊपर। तो भगवान ने किसको याद किया, हनुमान जी को याद किया, सही समय पे सही काम के लिए सही व्यक्ति को याद किया जाता है, वन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। हनुमान जी को बुलाया, क्योंकि हनुमान जी को वरुण देव डरते थे, हनुमान जी के सामने वरुण देव हमेशा हरि बोल राधे राधे, तो उनको आ गया कि आप समुद्र किनारे खड़े रहो और समुद्र को इस सीमा के आगे आने मत दो, मेरे जगन्नाथपुरी वासी मेरे वासी जो है वो सब दुखी है, कोई कष्ट नहीं उनको होना चाहिए। बोल ठीक है तब भी यस भगवान। तो समुद्र किनारे खड़े हो गए। अभी कैसा होता ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, कि एक प्योर डिवोटी है या कोई बलशाली व्यक्ति है या कोई पावरफुल व्यक्ति है, वो आप बोलेंगे ना वो है यहाँ पर, तो उतना ही काफी है, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐलान करने की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। किसी किसी के केवल होने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, केवल उपस्थिति मात्र से ही, बस बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके केवल होने से बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अभी खाली खड़े हैं समुद्र अपनी जगह पर है, भयभीत होकर अपनी जगह पर लहरा रहा है, हनुमान जी खड़े हैं। अभी हनुमान जैसे इतने एक्टिव कार्यशील कार्य तत्पर कार्य मग्न व्यक्ति को आप बोलेंगे खाली खड़े रहो तो इतना मुश्किल काम है। तो बहुत समय खड़े रहे, समुद्र तो आया नहीं आगे। और ये लोग क्या करते थे पुरीवासी, उनको कुछ पोहा और कुछ खिचड़ी खिलाते थे रोज। अभी हनुमान जी को सीता मैया के हाथ के लड्डू खाने की आदत है, पंच पकवान खाने की आदत है। सीता मैया के साथ में उन्होंने क्या क्या नहीं अनुभव किया। हाँ, इतनी मैया उनसे प्रेम करती थी सीता मई, और कितना वात्सल्य से उनको भोजन कराती थी, बेटा बेटा का कर पुकारती थी। बहुत याद आई उनको सीता मैया की। तो एक दिन सोचा कि अभी बहुत दिन हो गए, समुद्र तो आगे आया नहीं, नहीं आएगा, मैं एक रात को जाता हूँ छलांग लगा के, लड्डू वड्डू खा के आ जाता हूँ सुबह नाइट ट्रेन पकड़ के सुबह के मॉर्निंग ट्रेन में वापस आ जाऊँगा तो एक छलांग लगाई और अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँचे तो मैया ने बहुत प्रेम स्वागत किया उनको, अरे कहाँ थे बेटा तुम, क्या करे जगन्नाथपुरी में सेवा दिया है, उधर पोहा खाने को मिल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी याद आई तो आपके हाथ में भोजन खाने की इच्छा थी इसलिए आ गए। तो बड़े प्रेम से सीता मैया ने फटाफट उनके लिए बहुत सारे व्यंजन बनाए, बहुत सारे लड्डू बनाए, बड़े प्रेम से भोजन किया उसका। और जैसे भोजन हुआ, आशीर्वाद लिया, चरण छुए और सीधा छलांग लगाई और जगन्नाथपुरी आ गए। अरे यहाँ पर तो जिस क्षण निकले ना, जिस क्षण जिस लव मात्र में निकले, उसी समय समुद्र ने आक्रमण करके हाहाकार कर दिया था, त्राई त्राई माम कर दिया पूरा। सब लोग पुकार रहे जगन्नाथ जगन्नाथ, हनुमान जी कहाँ है हनुमान जी कहाँ है, वो देख रहे हनुमान जी किधर है, हनुमान जी नहीं है, सब पुकार रहे त्राही त्राही कर रहे। और सुबह आते हैं हनुमान जी मॉर्निंग फ्लाइट से तो जगन्नाथ जी कहते आपको यही खड़ा रहना है। बोले क्या करें आप, हम लोग यहाँ पर पोहा खिलाते तो कैसे खाएंगे हम लोग। तो जगन्नाथ जी वादा करते हैं कि आज के बाद में जो पंच पकवान लड्डू लगेंगे मुझे, वो सब आपको अर्पण किए जाएंगे, आप चिंता मत करना। और उनको आदेश दिया कि आपको जाना नहीं इसके बाद में। फिर भी भगवान ने, ऐसे नहीं कि उनको विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रेम से उनको बेड़ी से बांध दिया, पैर से, बोले खड़े रहो यहाँ पर, जब जाने का दिल होगा तो भी आपको ये बेड़ी बांधी रहेगी। अभी हनुमान जी के लिए तो बेड़ी तोड़ना इतना कठिन काम है क्या, लेकिन जो प्रेम से बांधी हुई बेड़ी है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो खड़े हैं वहां पर। उसका नाम क्या पड़ा उनका, बेड़ी हनुमान, जिनको पैर में भगवान ने बड़े प्रेम से बेड़ी बांधकर अपने जगन्नाथपुरी में बांध दिया है। और फिर समुद्र अपनी जगह पर है, हनुमान जी अपनी जगह पर है। बोलो बेड़ी हनुमान की। एक और एक हनुमान जी का यहाँ पर लीला है। आप जगन्नाथपुरी के मंदिर जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में आपको समुद्र की बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। गेट के बाहर जाएंगे ना, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कहीं भी बाहर निकलेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ आ सकती है। आजकल वो टैं 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 पों 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 के बीच में नहीं आती है, अभी दिन रात वो हॉर्न बजते रहते हैं। लेकिन आप रात के समय आएंगे ना तो आपको सिंहद्वार के पास भी समुद्र की लहरों की आवाज़ आएगी, बहुत मधुर और सुंदर आवाज़ आएगी। लेकिन एक समय जगन्नाथ जी लक्ष्मी के साथ में एकांत में थे और उनके हृदय की बातें आदान प्रदान हो रहा था, तो उनको समुद्र की लहरों का बहुत डिस्टर्ब होने लगा। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा ये मुझे मेरे मंदिर के अंदर एक शोर नहीं चाहिए, शांति चाहिए मुझे, एकांत चाहिए, ये सब आवाज़ बंद करवा दो। तो हनुमान जी गए और समुद्र के पास वाला कौन सा गेट है, वो व्याघ्र द्वार, वहाँ पर खड़े हो गए और समुद्र की ओर अपना कान करके खड़े हो गए। ऐसा जब गेट इस तरफ है तो ऐसे खड़े हो गए। और वो आपने देखा ना भिंग कैसे होता है, भिंग मालूम है आपको, लेंस, हम लोग बचपन में क्या करते थे, उसको पकड़ते थे ऐसे, सूरज की समांतर किरणें जो है वो उसको एकत्र करता है और एक पॉइंट बनाता है, पॉइंट। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, नरसिम्हदेव भगवान की। तो वो जो पॉइंट बनता है ना, वहां पर आप माचिस की तिल रखेंगे ना, तो तुरंत वो अग्नि प्रकट करेगी, है ना। खेला है ना बचपन में आपने, हमने बहुत खेला है बचपन में। तो वैसे उन्होंने सारी ध्वनि लहरें जो थी वो सब यहाँ पर बिखरी हुई थी, उसको एकत्र कर दिया उन्होंने। जय हो। संक्षिप्त क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र भगत जगन्नाथ पुरी धाम की। तो सारे ध्वनि लहरों को एकत्र किया और अपने कान में उसको एकाग्र कर दिया। कितना आवाज हो गया रहेगा। तो बेचारे हनुमान जी का कान का पर्दा फट गया, लेकिन फिर भी खड़े उधर वो, और सारी ध्वनि लहरें जितनी भी कितनी कौन से भी द्वार से प्रवेश करने वाली है वो सारे एकत्र करके अपने कान में लेकर खड़े वो। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, कान फाटा हनुमान। वो भी उधर व्याघ्र गेट के पास में। तो ऐसे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसे अद्भुत सेवा हनुमान जी करते हैं। इतनी सेवा करते हैं कि कोई सेवा नहीं करते ऐसा नहीं है। एक दिन तो सीता राम, सीता लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत और जितने भी सेवक थे सब परेशान हो गए, ये क्या है हनुमान जी सारी सेवा ले लेते हैं, जहां देखो हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी, कोई जगह नहीं जहां पर हनुमान जी नहीं है। तो एक दिन क्या करते हैं, वो सारी सेवा उसे ले लेते हैं, सब सेवा जो जो भी वो कर रहे हैं जिनको दिखाई पड़ रहे हैं ना। अभी हम लोग कौन सी सेवा छीन सकते बताइए आप, जो आप करते हुए देख रहा हूं उसको मैं छीन सकता हूं, जो आपके मन में है वो कैसे छीनूंगा मैं। आप सेवा छीन सकते हो, सेवा भाव नहीं छीन सकते हो, समझ में आपको आया। सब सेवा जो है छीन लिया उनसे। तो हनुमान जी वापस आए, देखा तो कोई सेवा ही नहीं, सब लोग ये करने गए तो बोले मैं कर रहा हूँ, वो करने गए तो मैं कर रही हूँ, सब सब लोग ने सेवा ले लिया उनसे। सीता जी भी उसमें थी, उन्होंने भी सेवा ले लिया। अभी हम आप बोलेंगे अभी हनुमान जी क्या करेंगे, इतने बड़े बड़े महारथी लोग सोच सोच कर चुन चुन के सेवा ले लिया है, जो भी भगवान की सेवा होती है वो सारी ले लिया उन्होंने। तो हनुमान का कोई बात नहीं, भगवान जब जमाई देंगे ना तो चुटकी बजाने की सेवा करूंगा मैं। होता है ना ऐसे बोला, अरे हाँ क्या है इसमें, क्या है अभी अभी क्या हुआ उसे। अबे जमाई कहाँ भी आ सकती है, दरबार में आ सकती है, घर में आ सकती है, अंतपुर में आ सकती है, हाँ शयन गृह में आ सकती है, स्नान गृह में आ सकती है, किधर भी आ सकती है। अभी देखो ना आप कथा सुन रहे हो तो बीच में होता है कि नहीं, चुटकी नहीं बजती लेकिन आती कि नहीं जमाई। तो अभी ये जमाई कब देंगे, अब कब चुटकी बजाएंगे, इसलिए सबके सामने बैठे रहते भगवान के सामने ऐसे, वेरी वेरी गोज लिसनिंग लाइक दिस, कब जमाई आएगी कब चुटकी बजाऊंगा। तो सब लोग हार गए उनके सामने, मतलब ये उनका सेवा भाव का गौरव करने के लिए इनके आयोजन किया गया था कि जिसको सेवा करनी है उसको कैसे रोक सकते आप, इसका प्रमाण है ये। हनुमान जी निरुत्साही नहीं हुए, अरे बड़े बड़े महारथियों ने अपना सेवा छीन लिया, अभी मैं क्या करूं, मैं तो छोटा सा हूं, ऐसे नहीं, ये सेवा तो करनी है किसी भी हालत से। ऐसे एक दिन वो सीता मैया को ना सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे, हाँ सीता मैया श्रृंगार कर रही है और सिंदूर लगा रही है, तो कहते मैया ये क्या है, तो बोलते ये सिंदूर है, ये सिंदूर क्या होता है, वो तो कहते हमारे सौभाग्य का लक्षण है ये, हम प्रभु राम की पत्नी हैं उसका ये लाक्षणिक सौभाग्य अलंकार है हमारा, इसको लगाने से प्रभु रामचंद्र को बड़े आनंद होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती, क्योंकि वो पूछते हैं इसको लगाने से क्या होता है, तो कहते ये लगाने से मांग में प्रभु रामचंद्र बहुत आनंदी हो जाते हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि इनको क्या क्या बताएं, सौभाग्य अलंकार का महत्व कैसे समझाएंगे, तो इसको जो समझ में आएगा वो बता देते हैं उसको, आनंद हो जाएगा। दूसरे दिन प्रभु रामचंद्र दरबार में आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं ना उसी रास्ते में पूरे शरीर को सिंदूर लगाकर बैठे, रास्ते में पूरे शरीर को लगाकर बैठे, और प्रभु को बहुत आश्चर्य हो गया, क्या हनुमान जी क्या हो गया आपको आज, सब लोग जोर जोर से हंस रहे हैं उनको देखकर, क्योंकि तभी तक किसी ने पूरे शरीर को सिंदूर लगाकर दर्शन नहीं दिया था किसी व्यक्ति ने आज तक, और प्रभु के रास्ते पर बैठे हैं। तो प्रभु ने मतलब वो रुक नहीं पाए अपने आप को, उन्होंने पूछा हनुमान जी को क्या बात क्या है, वो कहते हैं मैया ने कल कहा था कि ये सिंदूर मांग में लगाने से आपको बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कहा क्यों ना पूरे शरीर को लगा दूं, ज्यादा खुशी होगी। इतने से अगर इतनी खुशी हो रही तो पूरे शरीर को लगाऊंगा तो कितनी खुशी होगी। इसलिए आज भी हनुमान जी के मंदिर में पूरा सिंदूर लगाते हैं उनको, भगवान को सम सिद्धिर हरि तोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये व्यक्ति क्या कर सकता है, कहां तक कर सकता है, उसका प्रमाण देने के लिए आज भी वो उनको सिंदूर लगाते हैं। और वो सिंदूर को हम भी निकाल के सर पे लगाते हैं। वो सिंदूर का मतलब क्या है, उनका सेवा भाव है। वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी, एनीथिंग वील डू, ये उसका प्रमाण है। तो ऐसे हनुमान जी का कितना समय अपने पास, कोई बात नहीं, और एक कथा बताते हैं। वो एक बार क्या हुआ ना, द्वारका में रुक्मिणी देवी, गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र, ये तीनों को अहंकार हो गया। चक्र को अहंकार हो गया कि भाई मैं तो इनविंसिबल, अजेय हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मतलब मैं सबको परास्त कर देता हूं। गरुड़ को गर्व हुआ कि मेरा इतना वेग किसी को नहीं है, भगवान का वाहन हूं मैं, हवा से भी अधिक गति से मैं चलता हूं, अपने वेग के बारे में गर्व हुआ। और रुक्मिणी को क्यों गर्व हुआ, सौंदर्य के लिए, कहते भगवान ने मुझे पटरानी बना कर रखा है, मुझ में कुछ विशेष बात होगी इसलिए, मेरे सौंदर्य में इसलिए मुझे वो इतने आसक्त रहते हैं, अधिक समय मेरे साथ बिताते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे इतने प्रिय भक्त हैं ये लोग, और इनके अंदर ये अहंकार क्यों आ रहे हैं, उनका एक साथ में इलाज किया जाए। तो किसका बारे में सोचा उन्होंने, हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी को बुला लिया मन के स्मरण से, अयोध्या के बाहर जंगल में बुला लिया, सॉरी द्वारका के बाहर के जंगल में बुला लिया, और गरुड़ जी को बोला जाओ मेरे प्रिय पुराने युग के जो भक्त हैं हनुमान जी, वो मुझे मिलने आए हैं, उनको लेकर आना आप जाके। तो गरुड़ जी अपने हवा की गति से गए, वो देखा कि पेड़ पर बैठकर फल खा रहे हैं, बोला बैठो प्रभु ने बुलाया आपको, तुरंत बुलाया है। तो बोले नहीं भाई बहुत दूर से आया, मुझे भूख लग रही है, जरा मुझे फल वल खाने दो जरा। तो मन में क्या सोचते हैं, है तो बंदर ही ना, फिर भी पहले देखा आश्चर्य होता है उनको कि ये कैसा भक्त है, ये तो बंदर है। बाद में बात जब करते हैं कि मुझे फल खाने, तो बोला वो बंदर ही है, अभी क्या बोलेंगे उनको। मन में कैसा है ना कि आप मेरे पीठ पर आओगे ना तो जल्दी पहुंचाओगे ना, तो बैठता क्यों नहीं है, लेकिन इतनी अकल थोड़ी है बंदर को, जाने दो। बहुत समझाते हैं लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं आऊँगा, आप जाओ। तो वो चले जाते हैं अपने हवा की गति से वापस। यहाँ पर फल वल खा लेते हैं, तो वहाँ पर भगवान चक्र को बोलते हैं देखो आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई यहाँ पर आतंक नहीं चाहिए मुझे, किस प्रकार डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई ऐरा गरा आना नहीं चाहिए, ध्यान रखना पूरी द्वारका पर मंडराना ऐसी गोल 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 विजिलेंस, हाँ कोई भी ऐसा जीव यहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए जो नहीं आना चाहिए इसके अंदर, जो अयोग्य नहीं है इसके लिए। चक्र ड्यूटी पर लग गए, पूरा मंडरा रहे हैं, पूरा एरियल सर्कुलेशन। तो हनुमान जी फल वल खाते हैं, मस्त संतुष्ट हो जाते हैं, एक छलांग लगा देते हैं सीधे द्वारका के अंदर। तो ये चक्र उनको रोकते हैं, ऐ कहाँ जा रहे हो अंदर, मैंने प्रभु ने बुलाया है, कौन सा बंदर को प्रभु ने बुलाया, यहाँ पर कोई बंदर नहीं आता यहाँ पर। तो ये बार बार वो ऐसे जूझने लगा उनको, तो हनुमान ने ऐसा पकड़ा उसको चक्र को, सब पकड़ा और उसको फोल्ड किया भगवान ने, हनुमान जी ने सब पुड़ी बनाया, पुड़ी बना के मुंह में डाल दिया उसको, और चले गए अंदर। और वहां पर भगवान ने रुक्मिणी को कहा था देखो रुक्मिणी जी, पिछले युग में मैं प्रभु रामचंद्र था, उस युग में मेरे भक्त जो थे हनुमान जी वो आज मुझे मिलने आ रहे हैं, इसलिए ऐसा श्रृंगार करना आप, तो शादी में भी नहीं किया था मेरे साथ, ऐसा श्रृंगार करना आज सज सज के जितना हो सके उतना बेस्ट श्रृंगार करना आप। तो वो अपना बेस्ट श्रृंगार करके आई है और भगवान के साथ सिंहासन पर बैठी हुई है। तो फिर हनुमान जी आते हैं, भगवान के चरण छूते हैं, भगवान उनको गले लगाते हैं, अश्रु प्रवाह होता है दोनों के कंधों पर, दोनों के अश्रु बह रहे हैं, बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। रुक्मिणी बड़े आश्चर्य तक, अरे बंदर के साथ भगवान ऐसे मिल रहे हैं, बाप रे क्या भक्त होगा ये आदमी। फिर हनुमान जी के साथ बहुत पुरानी यादें निकालते हैं, बहुत बातें करते हैं, हनुमान जी को फल फूल खिलाते हैं, मेवा खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, और बहुत देर हो जाती है। उसके बाद में गरुड़ जी आते हैं, ये बता दे भगवान को वो तो बंदर आता ही नहीं है, मैंने कितना समझाया उसको, बोले ये तो कभी के आ चुके हैं, बहुत देर हो चुके हैं, बहुत घंटे हो चुके हैं। देखो आश्चर्य हो गया उनको, मैं तो हवा की गति से वहां निकला था, ये कभी कैसे आ गए, बोले छलांग लगा दिया और आ गए। फिर बहुत देर के बाद में भगवान हनुमान को पूछते हैं कि ये तुम्हारे मुंह में क्या हो गया, सूजन क्यों आ रही है? अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गया आपको कि जब मैं आ रहा था, कोई चक्र नाम का व्यक्ति मुझे रोक रहा था। मैंने बहुत समझाया उसको कि जाने दो, नहीं रोका, नहीं जाने दिया उसने, तो मैंने उसको पकड़ के पूड़ी बना के मुंह में रख दिया है। अरे अरे, मेरा भक्त है वो, मेरा भक्त सुदर्शन चक्र है वो। तो तुरंत उसको बाहर निकालते हैं और रिलीज करते हैं, तो वो हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं, कि कोई है भाई, मेरे ऊपर भी कोई है मुझे पूड़ी बांधने वाला। उसके बाद में हनुमान जी कहते हैं, भगवान बहुत आनंद आया आपको मिलकर, आज बहुत सारी बातें हुई, इतना आनंद हुआ, लेकिन एक बात मुझे जरा प्राइवेट में करनी है आपसे, अलग से कर सकते हैं क्या? बोला ठीक है। तो वहीं पर सबको बाजू में कर देते हैं और सिंहासन के उठते हैं और थोड़ा सा बाजू में चले जाते हैं। तो हनुमान जी प्रभु के राम में क्या कान में क्या पूछते हैं, प्रभु जी आप तो त्रेता में सीता मैया के साथ सिंहासन में बैठते थे, ये द्वापर में आप द्वारका में दासी के साथ क्यों बैठे हैं सिंहासन में? ऐसा बोलते हैं कि उनको भी सुनाई पड़ता है रुक्मिणी देवी को। एक वाक्य में रुक्मिणी देवी समझ गई कि सीता मैया की जितनी अनंत दासियां थी, उनका सौंदर्य मेरे साथ में वो तुलना कर रहे हैं, दासियों के सौंदर्य के साथ। तो सीता मैया कितनी सुंदर हो गई, तो उधर ही वो चूर चूर हो जाते हैं, उनका अहंकार वहां पर खत्म हो जाता है। फिर हनुमान जी पैर छूते और चले जाते हैं। हनुमान जी को कोई गर्व नहीं है कि हमने इतने इतने महारथियों का गर्भ हरण कर दिया, देखो भगवान ने मुझे चुना। हाँ, वो तो त्रिनादप भी सुनी चली है, वो बिल्कुल आनंद से भगवान की कभी सेवा हो तो याद कर लेना। ऐसी सेवा जो है ना, वो किसी को दे सकते नहीं है, क्योंकि ऐसे सेवा किसी को देंगे तो उसको खुद को ही गर्व होगा। किसी का गर्व हरण करने के लिए सेवा दिया तो उसको भी भयंकर गर्व हो जाएगा, उससे भी ज्यादा गर्व हो जाएगा। इसलिए सेवा के लिए भी पात्र होना चाहिए, सेवा करने के लिए भी स्वामी के मन में विश्वास उत्पन्न होने लायक होना चाहिए, ताकि वो उस सेवा के लिए आपको लगा दे और विश्वास रहे उनके मन में स्वामी की, ये सेवा देगी तो पूरी हो जाएगी। जिस भावना में करनी है, जिस कार्य के लिए करनी है, उसकी पूर्ति के लिए ये व्यक्ति योग्य है, ऐसा विश्वास स्वामी के मन में उत्पन्न होना चाहिए, वही श्रेष्ठ सेवक है। हरे कृष्णा, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। तो इसके बाद हम जाएंगे, यहां पर एक स्थान है, इसका नाम है चक्र नारायण मंदिर, चक्र तीर्थ। वहां पर सुदर्शन चक्र जो है वो गोलाकार है। आपको याद रखना है कि दर्शन तो मेरे सामने होता है ना, हम सब लोग सामने देखते रहते हैं, लेकिन वहां पर जमीन पर भी देखना दर्शन के सामने, वो जमीन पर एक बहुत ब्राउन भूरे रंग का बहुत बड़ा चक्र है, एक व्हील की तरह, एक्चुअली चक्र की तरह है, और उसको वहां पर पूजते हैं चक्र नारायण के रूप में, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। वहां पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का भी विग्रह है, उसके पास में ही कहीं वरुण देव का मंदिर है, उसको जगन्नाथ जी के ससुर का मंदिर कहते हैं। क्यों मालूम है आपको? समुद्र मंथन में लक्ष्मी देवी 14 रत्न में एक रत्न के रूप में प्रकट हुई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी? पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ, फिर शिवजी ने पिया उसको, फिर वापस मंथन चालू हो गया, तो 14 रत्न प्रकट हो गए, उसमें गाय भी प्रकट हो गई, सुरभि, फिर उसमें अश्व भी प्रकट हो गया, उच्चैःश्रवा, और उसमें लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। तो वो कौन हो गई? समुद्र की पुत्री हो गई, और लक्ष्मी के साथ में जगन्नाथ जी ने विवाह किया, तो जगन्नाथ जी कौन हो गए? जमाई हो गए समुद्र के। तो वरुण देव कौन हो गए? जगन्नाथ जी के ससुर जी हो गए। तो कहते हैं फादर इन लॉज टेम्पल, हरे कृष्णा। वहां पर एक सुंदर और एक दर्शन है, सामने जगन्नाथ बलदेव समुद्र है, नीचे चक्र है, और राइट साइड में ये दीवाल पे गरुड़ जी के कंधे पर विष्णु भगवान बैठे हैं, ऐसा दर्शन है, गरुड़ गोविंद जी। तो लास्ट टाइम में जब यहां पर कथा कहता, वो कथा नहीं कह पाया, वो समय बहुत कम था। तो वृंदावन में एक जगह है छटिकरा, कितने लोगों ने देखा है वो जगह छटिकरा? देखने लायक मतलब एक सिग्नल है वहां पर, एक और कुछ नहीं देखने के लिए, आजकल टर्निंग पॉइंट है वो, अंदर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो छटिकरा वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण का षष्ठी पूजन हुआ था। षष्ठी पूजन यानी जन्म के बाद में 6 दिन में षष्ठी देवता के लिए पूजा करते हैं। यशोदा माई और नंद महाराज भगवान के जन्मोत्सव में इतने व्यग्र हो गए थे, इतने व्यग्र हो गए थे, कहते हैं कि 6 महीने तक भगवान का जन्मोत्सव ही चलता रहा। हम लोग एक दिन मनाते हैं नंदोत्सव, प्रभुपाद जी का जन्मदिन, लेकिन नंदोत्सव 6 महीने तक चला, और 6 महीने के बाद भी ब्रजवासियों ने ब्रह्मा जी को बहुत गालियां दी, ये तो आज तो कम से कम जल्दी सूर्यास्त नहीं करना चाहिए था। 6 महीने के बाद में बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं सूर्यास्त कब हुआ सूर्योदय कब हुआ। 6 महीने के बाद जब सूर्यास्त होने लगा तो नंदोत्सव समाप्त होने लगा, तो ब्रजवासी लोग ब्रह्मा को कोसने लगे कि ब्रह्मा को तो कछु अक्कल है ही ना है, इतने जल्दी सूर्यास्त क्यों कर रहे हैं। एनीवे सूर्यास्त हो गया तो बीच में षष्ठी खत्म हो गया ना उसके अंदर, और फिर भी उनको याद नहीं यशोदा माई को। जब भगवान का 1 साल का जन्मदिन मनाने का अवसर आया तब यशोदा को याद आया कि जन्मदिन कैसे मनाएंगे 1 साल वाला, षष्ठी पूजा ही नहीं किया तो फर्स्ट बर्थडे कैसे मनाएंगे। तो जल्दी जल्दी में अगले साल के श्रावण वद्य षष्ठी को भगवान का षष्ठी पूजन किया गया, तो वो छठीकरा में, इसलिए उसका नाम पड़ा छठीकरा। और 2 दिन के बाद जन्मा भगवान का 1 साल का जन्मदिन मनाया गया। उस दिन क्या हुआ, जब भगवान का फर्स्ट बर्थडे था तभी क्या हुआ, तृणावर्त आया था उस दिन भगवान के बर्थडे के दिन, और भगवान ने तृणावर्त का वध किया। एनीवेज हम लोग गरुड़ गोविंद की ओर आ रहे हैं, तो वहां पर एक गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है, तो वहां पर एक बार कृष्ण भगवान अपने सखाओं को लेकर गाय चरा रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा गरुड़ बन जाओ, तो सुदामा अचानक गरुड़ पक्षी बन गए भगवान की इच्छा से। इसका मतलब क्या हुआ, माधुर्य धाम में भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं। गरुड़ जी कहाँ पर होते हैं, वृंदावन में होते क्या, द्वारका में होते हैं जहाँ पर भगवान अपने राजा बनकर विराजमान है। तो जैसे ही उन्होंने गरुड़ का आह्वान किया और सुदामा को गरुड़ बनाया, मतलब अभी ऐश्वर्य प्रदर्शन शुरू हुआ उनका, तो भगवान उस पर विराजमान हो गए। 12 भुजा वाला स्वरूप धारण किया उन्होंने, 12 आर्म्स। और जैसे ही वो 12 भुजा वाले भगवान प्रकट हो गए और वो गरुड़ पर विराजमान हो गए, तुरंत सत्यभामा और रुक्मिणी वहां पर प्रकट हो गई, मानो द्वारका का ही दर्शन हो गया उधर। तो वो है गरुड़ गोविंद जी, बहुत ही अद्भुत दर्शन है, बहुत ही अद्भुत। और ब्रजवासी जो लोग हैं ना, खास ब्रजवासी लोग, वो गरुड़ गोविंद जी को बड़ा सम्मान देते हैं, जैसे बांके बिहारी जी हैं और गरुड़ गोविंद जी, बहुत उनको मानते हैं वो। वहाँ पर जो आते हैं यात्री कम आते हैं, ब्रजवासी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका वो बहुत श्रद्धेय प्राचीन मंदिर है। तो वैसा ही गरुड़ देव के कंधे पर बैठे हुए गोविंद का दर्शन उस मंदिर में है, इसको आप भूलना नहीं। हाँ, हरे कृष्णा। अभी हम यहाँ से फिर बस में बैठकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता है आपको, गुंडीचा मंदिर। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुंडीचा मंदिर को जगन्नाथ बलदेव का जन्म स्थान कहा गया है, बर्थ प्लेस, जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वास्तव में महावेदी पर उनका जन्म हुआ था, और वहीं से सबसे पहले रथ यात्रा हुई थी, जब विग्रहों को लेकर इंद्रद्युम्न महाराज वहाँ से नीलाचल पे स्थापन करने के लिए गए थे, ब्रह्मा जी को लेकर। जब ब्रह्मा जी आए ना, हमने कहा ना ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी फिर उतरे, और वहाँ पर ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और आप सुनते हैं ना, वो जब सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे ढूंढते ढूंढते कि कैसे उद्धार होगा जीवों का, कैसे कष्ट निवारण होगा, तो भगवान नील माधव ने उनको लक्ष्मी के साथ दर्शन दिया था। उसके पहले एक कौवा रोहिणी कुंड में बाय द वे मिस्टेक से गिरा, और वो चतुर्भुज धारण किया रूप उसने, वो कौवा है काकभुशुंडी, वो एक चिरंजीवी जीव में से एक है, जैसे विभीषण है अश्वत्थामा वैसे काकभुशुंडी भी वैसे ही कौवा है, लेकिन मुक्त है वो और चिरंजीवी भी है। तो वो कौवे ने उस समय आकर पूरी कहानी बताई थी, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियां निकल चुकी थी ना, ये ब्रह्मा लोक में गए तो ब्रह्मा जी का 1 मिनट में, 1 क्षण में तो यहाँ पर 1 साल गया था द्वापर में, तो वैसे ब्रह्मा जी कई पहुँचने के लिए कई दिन लगे उनको। ऊपर से कहते ब्रह्मा जी 3 मिनट के लिए पूजा में थे उस समय, कोई स्पेशल प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, तो उन्होंने थोड़ा रुकाया उनको, तो 3 मिनट में पता नहीं और कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, और नीचे यात्रा किया तो और सारी पीढ़ियाँ गुजर गई। तो जब भी वो आए इंद्रद्युम्न महाराज और जगन्नाथ जी को यहाँ से लेकर वहाँ रथ में लेके जा रहे थे और पहुँचे वहाँ पर, तो उस समय के राजा ने आक्रमण किया उसके ऊपर, युद्ध के ललकारा कि आप कौन हो, कैसे आप यहाँ पर आकर हमारे भगवान को छू रहे हो। तो वो काकभुशुंडी ने आकर वहाँ पर नए राजा को, मतलब उस समय के राजा को पूरी कहानी सुनाई कि इसका इतिहास क्या है। तो वो राजा जो है उसके शरणागत हो गए, माफ़ी मांगी उन्होंने, और फिर इंद्रद्युम्न राजा ने सभी देवताओं की उपस्थिति में, नारद मुनि की उपस्थिति में, ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठापित किया। तो पहले रथ यात्रा हुई गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ के मंदिर तक। आज कैसी यात्रा होती है? जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा तक। और जो उल्टी यात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? उल्टा रथ नहीं कहते हैं, और तो हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में, उसका नाम है बहुड़ा रथ, बहुड़ा, बहुड़ा यात्रा कहते हैं उसको। बहुड़ा यात्रा में वो साला बेग की कहानी होती है। साला बेग जो भगवान के भक्त थे उस समय, बहुड़ा यात्रा में उल्टे जगह पर वो रुक गया था रथ, और वृंदावन से साला बेग महाराज मुसलमान थे वैसे, वो परम वैष्णव बन गए थे, वो वहाँ से दर्शन करने के लिए वृद्ध अवस्था में आ रहे थे, तो वो उतनी स्पीड से आ नहीं पा रहे थे। पुकार पुकार के प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, बीच में रस्ते में गिर रहे थे। तो जगन्नाथ जी वहाँ पर आके रुक गए, और कुछ भी करने पर रथ आगे नहीं जा रहे हैं। फाइनली जब साला बेग पहुँचे वहाँ पर, और रथ के सामने खड़े होकर उन्होंने बहुत सारी प्रेम भरी प्रार्थनाएं कविताएं अर्पण की, तब जाकर वो रथ वहाँ से आगे निकला है। और उसी जगह पर साला बेग ने अपना कुटिया बना लिया, और पूरे जीवन भर अनंत कविताएं लिखी उन्होंने, और वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया। तो आज वहीं पर उनकी समाधि भी है, वो भजन कुटी भी है और समाधि भी है, वो बहुड़ा यात्रा में लीला हुआ था उनका। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है, वो गुंडीचा भगवान की बड़ी भक्त थी, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे कोई, सॉरी, इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान से संतान न होने की, क्या कहते हैं उसको, वरदान मांगा था कि आई डोंट वॉन्ट एनी सन, क्योंकि मेरे पुत्र फिर वो जगन्नाथ मंदिर पर अपना अधिकार जमाएंगे ना, तो ये आपका मंदिर होना चाहिए हमेशा। तो एक यहाँ पर वदंती है, लोक वदंती कहते हैं उसको, उसमें कहा गया है कि इंद्रद्युम्न महाराज ने फिर गोद लिया किसी को, और वो गोद लेने की परंपरा आज भी जारी है। राजा को पुत्र होते हैं, लेकिन वो पुत्र आगे का गजपति नहीं बनता है, जो गोद लेते हैं वही गजपति बन जाता है, ताकि कोई अपने, क्या कहते हैं, वंश से अधिकार न जमाए मेरे मंदिर पर, आपके मंदिर पर। तो गुंडीचा माता जी ने कहा था, अरे मुझे फिर वो पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, इन्होंने वरदान मांग लिया, मैं क्या कह सकती हूँ। तो जगन्नाथ ने कहा, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा। आज भी एक तिथि ऐसी आती है जो मुझे याद नहीं है, आज भी वो तिथि आती है जब जगन्नाथ भगवान स्वयं सफेद वस्त्र पहनकर राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा देवी का श्राद्ध करते हैं। ऐसी एक कथा और कहां पर है बताइए? मायापुर में अग्रद्वीप में गोविंद घोष नाम के भक्त थे, उनके भी पुत्र का देहांत हो गया, तो उन्होंने राधा गोपीनाथ जी को बोला, अभी आपने मेरा पुत्र तो छीन लिया, मैं अभी कैसे मेरा श्राद्ध कौन करेगा। 3 दिन तक भगवान को भूखा रखा उन्होंने, एकदम निराश हो गए थे वो, भगवान का मुझे खाना खिलाओ, मैं 3 दिन से भूखा हूं, पहले बताओ श्राद्ध कौन करेगा। तो गोपीनाथ जी ने कहा कि मैं श्राद्ध करूंगा आपका, तो उन्होंने फिर सेवा आरंभ किया उनका। तो जब वास्तव में गोविंद घोष का देहांत हुआ, उस समय जब उन्होंने पर्दा खोला बाकी भक्तों ने, तो भगवान का जो श्रृंगार किया था वो कैंसिल करके भगवान ने स्वयं सफेद वस्त्र धारण किए थे। तब इनका सबको याद आया, इन वचनों का जो ये बात हुई थी ना, अभी कभी कभी कहा एक बार ऐसे बात हुई थी तो लोग भूल गए, लेकिन सबको याद आया कि भगवान अपना वादा निभा रहे हैं। तो आज भी गोविंद घोष के तिरुभाव के दिवस पर गोपीनाथ जी वहाँ पर सफेद वस्त्र पहनकर उनका श्राद्ध करते हैं। वैसे ही गुंडीचा देवी को अपनी माता मानकर जगन्नाथ जी भगवान उनका श्राद्ध करते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज का भी करते हैं। तो ये गुंडीचा मंदिर जो है वो इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने रानी के नाम से बनाया, और भगवान ने अपनी माता गुंडीचा देवी को भी वचन दिया था कि आपके आनंद के लिए साल में एक दिन में एक हफ्ता पर आपके यहाँ पर आकर रहूंगा। तो इसलिए रथ यात्रा का और भी एक नाम है, गुंडीचा यात्रा। गुंडीचा माता के आनंद के लिए भगवान साल में एक बार अपना जो नीलाचल धाम है उसको छोड़कर गुंडीचा आते हैं, उसका नाम है सुंदराचल। और उसके कई कारण है, कारण तो गुंडीचा देवी का इच्छा पूर्ति है, दूसरा कारण है कि वो वृंदावन के लिए तरसते हैं, तो ब्रजवासी भाव में सब धामवासी आकर उनको वृंदावन के भाव में वहाँ सेवा करते हैं, इसलिए गुंडीचा मंदिर जो है वो गुप्त वृंदावन है। श्री गुप्त वृंदावन की 10,000 दर्शन जगन्नाथ जी के आज है, जहाँ पर, क्या पर है वो, नीलाचल जगन्नाथ जी के मंदिर में 10,000 दर्शन अगर आप करते हैं तो वो रथ यात्रा में बीच में जब भगवान गुंडीचा मंदिर में स्थानापन्न होते हैं तो वहां के एक दर्शन के बराबर है, इतना शक्ति है उसके अंदर। जैसे पंडरपुर में कैसे साल भर लोग दर्शन करते हैं, लेकिन आषाढ़ एकादशी में क्या होता है, क्या उसमें स्पेशल क्या है, वही तो ऐसे ही खड़े हैं भगवान। उस दिन पंडरपुर के विट्ठल भगवान गोपाल भाव में रहते हैं, गाय चराने के मूड में रहते हैं, श्री वृंदावन धाम के मूड में रहते हैं, इसलिए उस दिन सब लोग भीड़ करते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। उसी तरह से गुंडीचा को 7 दिन रहते हैं, देखिए एक दिन जाने के लिए लगता है, फिर वो दिन रोड पे रहते हैं भगवान, अगले दिन चले जाते हैं अंदर, तो वहां से 7 दिन वहां रहते हैं और एक दिन वापस आने के लिए। द्वितीया के दिन आषाढ़ को रथ यात्रा होती है, तृतीया के दिन शाम को अंदर प्रवेश करते हैं और दशमी के दिन खत्म होता है उनका, और एकादशी के दिन बहुड़ा यात्रा होती है। हमारा जो आषाढ़ा एकादशी होती है ना, उसी दिन पंडरपुर की एकादशी के दिन यहाँ पर बहुड़ा यात्रा होती है। तो एकादशी को लौटते हैं और फिर द्वादशी को वो शुनावेश होता है और त्रयोदशी के दिन अंदर चले जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा काम है इनका, बहुत सुंदर। बहुड़ा यात्रा में आते हैं तो उनको रोक देते ना, लक्ष्मी जी अच्छा है तुम्हारा, हाँ भाई बहन को लेके चले गए, मुझे तो बोला भी नहीं आपने और याद भी नहीं कर रहे हैं, कोई संदेश नहीं कुछ नहीं, बीच में आके जाते मिलने के लिए याद करते तो उनको दरवाजा बंद कर देते हैं, एक माला भेज देते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसा पैर जमीन पे मार कर बाहर आ जाती है और जिस रथ में बैठ कर जगन्नाथ जी आए थे उसका आरा तोड़ देती है, बोलते वापस लौट के आ फिर देखती हूँ तुम्हारे लिए। और वापस आकर क्या करती है, सारे चूल्हे तोड़ देती है, क्योंकि इनका जो अस्तित्व है वो तो भोजन पे निर्भर रहता है ना, ही इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन माय किचन, देखती हूँ अभी मुझे छोड़ के चले जाते हैं, सारा किचन ध्वस्त कर देती है। और ये अपना आनंद बना के ब्रजवासियों का सुख लेकर लौट के आते हैं, उनको तो पता ही नहीं अंदर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो जब आने की खबर आती है तो लक्ष्मी देवी आती है देखने के लिए क्या हो रहा है, तो ये कोशिश करते हैं अंदर जाने का, धड़ाड़ दरवाजा बंद कर देते, जाओ अभी दरवाजा नहीं खोलेंगे आपके लिए। बलदेव और सुभद्रा बहुत संकोच में आ जाते हैं, पति पत्नी का झगड़े का मामला है, हम लोग क्या करें बीच में, वो भी खड़े हैं ये भी खड़े हैं, सब लोग भक्त लोग परेशान हैं जगन्नाथ जी के, अरे रानी तो बहुत नाराज हो गई है, दरवाजा बंद कर दिया, अभी कौन खोलेगा दरवाजे को, क्या करें, जगन्नाथ जी रो रहे हैं, बहुत सर्क हो जाते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। तो अचानक एक योजना बनती है कि आपको सोने का वेश धारण करते हैं, सुनावेश, तो उनके सोने के अलंकारों से उनका श्रृंगार करते हैं, सुनावेश, कहते हैं जगन्नाथ जी के 1000 किलो के सोने के दागिना हैं, 1000 किलो, और गुंडीचा देवी ने उनको वो सोने के हाथ और सोने के चरण कमल भी भेंट में दिए थे, वो भी है उनके पास, धारण करते हैं। अभी देखो समझो अभी आप दूल्हा बने, क्या दूल्हा शादी हो गया आपका, सॉरी सुजी, बहुत लोग बने होंगे दूल्हा, आपको दूल्हा बनते समय कितना आनंद आता है ना, कोई सजा रहा है, कोई बाल बना रहा है, कोई अपनों को कुर्ता पहना रहा है, कोई जैकेट पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनका भी बहुत बड़ा श्रृंगार हो रहा है, लेकिन इनका श्रृंगार करते समय रो रहे हैं ये, क्योंकि ये श्रृंगार करने का आइडिया फेल भी हो सकता है उनको मालूम, इसलिए अद्भुत श्रृंगार करने का लीला है ये, इसमें लीला में श्रृंगार तो बहुत बढ़िया हो रहा है, अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, लेकिन जिसका हो रहा है उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो फिर जगन्नाथ को देखने के दोबारा ऐसे कमर में हाथ रख के आती है, तो देखते ही सुनावेश देखकर घायल हो जाती है, पूरी व्याकुल हो जाती है, हाथ हृदय पिघल जाता है, पूरा गुस्सा भूल जाती है, फिर अंदर ले जाते हैं उनको, ऐसी लीला उनकी। एनीवेज तो ये सब लीला जो है वो गुंडीचा देवी की कृपा है, गुंडीचा देवी ने उनको बुलाया था। जो दर्शन हम लोग करते हैं ना गुंडीचा मंदिर में, उसको आड़प दर्शन कहते हैं, उसका एक टेक्निकल नाम जो आड़प दर्शन है। तो ऐसे कहा गया है कि आप सबसे विश्व में सबसे स्वादिष्ट और सबसे आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य शक्तिशाली प्रसाद जगन्नाथ जी का है, केवल जगन्नाथ जी का दर्शन नेत्रोत्सव, उनके लिए भी नेत्रोत्सव हमारे लिए भी नेत्रोत्सव, दोनों नेत्रोत्सव, और उनका प्रसाद ग्रहण करना, ये दोनों कार्य करने से यहाँ पर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की, जगन्नाथ दर्शन की। जगन्नाथ जी दिन भर बड़े बड़े कमल पत्र जैसे, कमल दल नहीं, कमल पत्र जैसे नेत्रों से अपने भक्तों को प्रेम से उत्कटता से निहारते रहते हैं, इसलिए रात को उनको सरदर्द होता है। अब एक टक कोई दिखता रहेगा घंटों घंटों तो सर दुखेगा ही ना, दुखेगा ना, रात को उनको चंदन लगाते हैं, और रात को चंदन लगाकर वो गीत गोविंद खंडुआ, जिस वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा गया है, ऐसे रेशमी वस्त्र को सर पे फेटे कर धारण करते हैं और चंदन लगाते लगाते गीत गोविंद सुनते हैं भगवान रोज रात को, उसको कहते हैं बड़ो श्रृंगार वेश, रात को 11:30 बजे होता है। वो चंदन लागी होती है, उसमें आदमी बड़ श्रृंगार वश होता है और गीत गोविंद का गायन भगवान बड़े प्रेम सुनते हैं और अपना श्रम परिहार करते हैं। भक्त लोग उनको चामर सेवा करते हैं और ठंडा कर देते हैं। तो वहां का प्रसाद जो है जगन्नाथ जी का, वो कहाँ मिलता है? देखो सबको मालूम है ना, जहां पर आनंद है वो जगह सबको मालूम होगी ना क्या। इसलिए जिन जिनको आनंद चाहिए वो आनंद बाजार जाइए और भरपूर आनंद ले लीजिए। आज का आखिरी दिन है, आज वैसे भी प्रभुपाद जी का कैलेंडर तिरुभाव दिन है, 14 नवंबर 77 को उनका शरीर समाप्त हो गया था। तो कहते हैं कि उससे भी अधिक पावरफुल गुंडीचा का महाप्रसाद है, क्योंकि वो ब्रज भाव में बनाया गया है, ये ऐश्वर्य भाव में बनाया गया है। वृंदावन की खासियत क्या है? वृंदावन में रहने वाले हर जीव का ज्ञान का हरण करते भगवान। और ज्ञान किस चीज का है? कि ये भगवान है, ये ऐश्वर्य है उनका। हाँ, ये भगवान होना मतलब ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो ये भगवान होने वाला जो ज्ञान है उनका, वो ही वो छीन लेते हैं। और फिर यशोदा माई, ग्वाल बाल, गोपियां सब भगवान से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो वो भगवान है ही नहीं। को डांटते हैं, उनके कंधे पर चढ़ते हैं, उनको डंडा दिखाते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो ये ब्रज का भाव जो है ना, वो ऐश्वर्य मुक्त है, इनकी प्रेम बुद्धि है। और ये प्रेम बुद्धि में जो वश होकर भोजन बनाते हैं, उसका स्वाद जो है वो जगन्नाथ के भी मंदिर से, प्रसाद से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। गुंडीचा मंदिर की जय हो। तो ये उसके आगे आप जाएंगे तो इंद्रदुम्न सरोवर पहुंचेंगे आप। देखो गुंडीचा मंदिर बाहर निकलेंगे ना तो राइट टर्न करते आपको नरसिंह भगवान का मंदिर आएगा। वहां पर भी जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु ने मार्जन किया था और विश्राम उस थोड़ा आगे किया था, उसका नाम है चैतन्य महाप्रभु विश्राम स्थली। उसके आगे आप चल के जाएंगे एक आधा किलोमीटर तो आपको इंद्रदुम्न सरोवर आएगा। जो लाखों गाय लाए थे ना इंद्रदुम्न महाराज ने, वो उन्होंने वहां पर एक जगह पर उनको इकट्ठा कर रखा था। तो कहते हैं उनके वजन से जमीन धस गई थी और उनके दूध और मूत्र से वो कुंड तैयार हुआ, इंद्रदुम्न सरोवर। इस सारे गायों का दान दिया उन्होंने, उसके बीच में ही ये कुंड का निर्माण हुआ। ये कहते हैं कम से कम 10 एकड़ में ये कुंड बना हुआ है। और ये कुंड की बहुत सुंदर लीला है, मैं बताता हूं आपको। ऐन मौके पर्चे कहाँ गाय बजे समझ में नहीं आता। अरे पर्चे नहीं है सर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी सबसे पहले आप इस सरोवर को प्रणाम कीजिए इस मंत्र के द्वारा। सब लोग बोलिए, नातः परतरो तीर्थम, नातः परतरो तीर्थम, हय मेधांग संभवात, हय मेधांग संभवात, इंद्रद्रुम्नस्य सरसः, इंद्रद्रुम्नस्य सरसः, स्याद वात्री पथगा समा, स्याद वात्री पथगा समा। नाथ परतरो मतलब इससे बड़ा श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा वर्णन है इसका। और सरस्य यानी सरोवर, इंद्रदुम्नस्य सरसः मतलब इंद्रदुम्न महाराज जी का यह सरोवर है। और त्रिपथगा समा मतलब त्रिगुणों से प्रभावित जीवन जो हमारा उसको वो नष्ट कर देता है। तो ये कुंड जो है वो गौमूत्र और गौ के रस यानी दूध से बना हुआ है। इसी के किनारे इंद्रदुम्न महाराज ने 1000 अश्वमेध संपन्न किए थे और इसी के जल से चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया था। बहुत पास में है वो। तो वो मटके के भांडे लेके आए थे ना, वो जे देकर उसको आगे पीछे कर रहे थे। रास्ता बहुत छोटा था तो कहते हैं कि जो भाग रहे थे खाली मटके लेकर, वो भरे हुए मटके लेकर जो भाग रहे उनसे टकराते थे और कई मटके फूट गए वहाँ पर। और लेकिन फिर भी बहुत सारा जल पहुँचा और चैतन्य महाप्रभु ने एक उत्कृष्ट लीला का वहाँ पर पूर्व सुंदर तरीके से नियोजित लीला वहां पर भगवान ने संपन्न की, जिसके द्वारा सब विश्व को ऐसा उन्होंने एहसास दिलाया कि गुंडीचा मर्दिन मार्जन यानी हृदय के मार्जन की तरह है। गुंडीचा मर्दिन हमारे हृदय की तरह है क्योंकि हमारा हृदय वृंदावन है जहां पर कृष्ण निवास करते हैं। और जब हम गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं तो हृदय का भी मार्जन होता है। और कैसे मार्जन किया? केवल हरि हरि और कृष्ण कृष्ण बोलकर उन्होंने मार्जन किया। वही एक कोडवर्ड था वहां पर, हरि 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 कृष्ण कृष्ण, सब प्रकार के संदेश इस एक ही शब्द में संचालित हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक स्वच्छता की, सबसे अधिक महावेदी की, महावेदी के दीवालों की, जमीन के हर एक कोने की। और फिर उन्होंने वहां पर जब वो साफ कर रहे थे ना, तो बंगाल के भक्तों ने बीच में एक मटके से उनके पैरों पर जल फेंका, तो तुरंत वो जल पैर धोकर वापस लौट के आया उतार में, तुरंत उस भक्तों ने, भक्त ने उसको पिया, सब भक्तों ने भी पिया तुरंत, मतलब आंख झपकने के बीच में ये सब काम हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य रूप से मन में क्रोध प्रकट किया, अंदर से बड़े प्रसन्न हो गए वो, लेकिन बाह्य रूप से उन्होंने क्रोध प्रकट किया, दोबारा किया, तीसरी बार किया, और पहली बार से अधिक दूसरी बार, दूसरी बार से अधिक तीसरी बार लोगों ने उनके जल का आस्वादन लिया। उस समय अधिक क्रोध प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया, बोले स्वरूप ये बंगाली वैष्णव जो है बड़े अशिष्ट हैं, दे आर नॉट वेल मैनर्ड, जाओ उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दो अपनी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इस प्रकार के वाक्य से जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को बताया कि तुम्हारे बंगाली वशिष्ठ वशिष्ठ जो हैं, भक्त जो हैं बड़े अशिष्ट हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना। उस दिन स्वरूप दामोदर जी जो ललिता जी के अवतार हैं, उन्होंने ललिता जी को सारे गौड़ीय वैष्णवों को अपने चरणों में सौंप लिया, अपने गोद में ले लिया। समझ में आया आपको? बाय दिस सेंटेंस श्री चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड ऑल ऑफ अस गौड़ीय वैष्णवास अंडर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ललिता देवी। ललिता देवी के निर्देश में भगवान ने हमको दे दिया है, इसलिए आज भी गौड़ीय वैष्णव जो हैं ललिता देवी को अपना प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करने के पहले, राधा रानी को प्रणाम करने के पहले, क्योंकि राधा रानी भी ललिता देवी को ऐसा उन्होंने आदेश लेकर रखा है कि जिस भी जीव में कर्ण मात्र भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, कृष्ण भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, उसे ढूंढ कर लेके आओ। तो ललिता देवी जिसके हृदय में कर्ण मात्र भी इच्छा है भगवान को सेवा करने की, राधा रानी को प्रसन्न करने की, उनको ढूंढ के लेके आती है और अपने परवरिश में उनको तैयार करती है, फिर राधा रानी के हाथ में देती है, फिर राधा रानी उसको कृष्ण को अर्पण करती है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला के माध्यम से हम सबको ललिता देवी के चरणों में सौंप दिया। फिर इंद्रदुम्न सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई है, उसमें एक लीला यह है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार अपने सारे भक्तों को लेकर इंद्रदुम्न सरोवर में गए। अभी इसके पहले ही सार्वभौम भट्टाचार्य जो लॉजिशियन थे, तर्कशास्त्री थे, मायावादी थे वगैरह वगैरह, महापंडित थे, महागंभीर थे, महाविद्वान थे, सर्वोच्च पद पर थे राजगुरु के, वो भी उनका परिवर्तन भी हो चुका था, उनका तर्कवाद खत्म हो के भक्त बन गए थे वो, ब्रह्मानंद भारती भी आ गए थे, स्वरूप दामोदर भी आ, सब लोग आ गए वृंदावन में, अपने नवद्वीप में, क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने जल में प्रवेश किया। जल में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, किसी को आइडिया? आपने कभी जल में प्रवेश किया? क्या अनुभव होता है आपका? यस, माताजी ने प्रवेश किया जल में, क्या होता है? अरे बॉडी हल्का होता है, ठंडा लगता है, सब ठीक है, लेकिन आप बच्चे बन जाते हो, है कि नहीं? हाँ, अंदर क्या हो रहा है पूछ रहा, आप बाहर का बोल रहे हैं। जल में प्रवेश करते ही सब लोग बालक बन जाते हैं, कितना भी गंभीर होंगे, थके होंगे, अच्छा मूड नहीं होगा, जल में प्रवेश करते ही हंसने लगते हैं सब लोग, एकदम मूड में आ जाते हैं, है कि नहीं? आप देखो कभी, ऐसी एक वृंदावन में जगह है जहां पर बड़े बड़े बुजुर्गों को मैंने बालक होते हुए देखा है, बता सकते हैं आप कौन सी जगह है वो? फिसलिनी शिला, काम्यवन में एक शिला है, वहां पर लोग घसरगुंडी कहते हैं उसको, वहां पर मैंने 70 साल के हमारे प्रोफेसर माताजी को भी लेके गया था मैं एक बार उधर, लेकिन बालकों की तरह हंस हंस के, खिलखिला के, सब लोग 7 बार फिसले वहां पर। मैंने कहा कल पेपर में खबर दूंगा मैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग स्कूल इज स्लाइडिंग इन वृंदावन। तो मुझे वास्तव में वहां पर अनुभव हुआ कि भगवान के धाम में हम लोग प्रवचन बहुत सुनते हैं, हृदय बालक की तरह होना चाहिए, है ना। कितना भी बड़ा विद्वान ऋषि होगा तो भी हृदय जब बालक के समान होता है ना, तभी जाकर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उसको कहते हैं निष्पाप निरागस स्वभाव, जैसे बालक का होता है निष्पाप स्वभाव होता है, तो वैसे वी से नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक, है ना। तो वैसा स्वभाव एक तो जलाशय में प्रवेश करने से होता है, और दूसरा वहां पर फिसलनी शिला पर, और तीसरा कभी होता है जब भी आपके बालकपन के यादें या यादों को लोग ताज़ा करते हैं ना, तब आप एकदम छोटे से हो जाते हो। जब आप स्कूल के फ्रेंड्स के मिलते हो, 60 साल की उम्र में स्कूल के फ्रेंड्स के मिलते हो, तो आप भी एकदम छोटे से हो जाते हो, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं बालक बनने के, लेकिन सबसे इजी तरीका यह है कि आप इंद्रधनुष सरोवर जाओ, या तो आप काम्य वन में जाओ वृंदावन में, और वो फिसलनी पहाड़ी में अनंत बार खिसको, तो आपका जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त जो है, देखो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के खास पार्षद नित्यानंद प्रभु स्वरूप दामोदर पुंडरीक विद्यानिधि, वो कौन है? वृषभानु महाराज के अवतार है वो, मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हैं, वासुदेव दत्त कौन है? प्रहलाद जी के अवतार हैं, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं, गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, राघव पंडित कौन है? चंपकलता देवी, और वक्रेश्वर पंडित जैसे महान भक्त जो है वो जल में उतरते हैं और कई सर्कल बनाते हैं, और पता है क्या करते हैं? मुंह से करताल का आवाज निकालते हैं, मुंह से सब दंग रह जाते हैं, ऐसे सर्कल करके कई सर्कल बनाते हैं, कभी एक बनाते हैं कभी अनेक बनाते हैं, और मुंह से पहले करताल का आवाज निकालते हैं, उसके बाद मेंढक की आवाज निकालते हैं। देखो इतने बड़े पंडित विद्वान जल में खड़े लेकर मेंढक की आवाज निकाल रहे हैं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी खेलो जल में आप, तो जोड़ी बन जाती है ना, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ में जल उड़ाना शुरू कर देते हैं, और अद्वैत आचार्य को नित्यानंद प्रभु हरा देते हैं, और नित्यानंद प्रभु जैसे जीत जाते हैं अद्वैत आचार्य उनको बहुत ताने देते हैं, यानी बुरा शब्द बोलते हैं उनको बहुत। उसके बाद में स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि का फाइट होता है, उसके बाद में मुरारी गुप्ता, अब इतने बड़े विद्वान थे मुरारी गुप्ता, वैद्य भी डॉक्टर भी थे वो, मुरारी गुप्ता जो बच्चे जैसे खेल रहे हैं वासुदेव दत्त के साथ, उसके बाद नारद मुनि के अवतार गदाधर पंडित के साथ में युद्ध खेल रहे हैं पानी का, और कैसे ना हमारे कैसे कीर्तन में होता है, सब लोग गोल खड़े रहते हैं बीच में किसी को खींचते हैं, फिर वो नाचते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, ऐसे ही एक एक जोड़ी को ला रहे हैं, वो हारने के बाद में बाहर दूसरी जोड़ी अंदर, ऐसे बहुत देर तक महाप्रभु चैतन्य स्वयं निहार रहे हैं इसको। उसके बाद में फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के अवतार, उस समय के पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठ कुल विद्यापीठ के कुल गुरु, द बिगेस्ट चांसलर ऑफ द होल यूनिवर्स यूनिवर्सिटी, सार्वभौम भट्टाचार्य, और साथ में कौन है उनके? राय रामानंद ये कौन है? विशाखा के अवतार है, और वो भी कोबूर के गवर्नर थे, बहुत बड़े पावरफुल अधिकारी थे वो, ये दोनों महान व्यक्ति बीच में आ जाते हैं और उनका जल उड़ाना शुरू हो जाता है, वाटर स्प्लैशिंग। तो चैतन्य महाप्रभु ना इतना खुश होते हैं उनको देखकर, इतना खुश होते हैं, वो गोपीनाथ आचार्य को क्या बोल रहे हैं, गोपीनाथ जाओ उनको बताओ ऐसे बच्चों की तरह मत खेलो इतने बड़े विद्वान हैं ये लोग, अंदर से बड़े खुश हो रहे हैं लेकिन बाहर से ताने मार रहे हैं, देखो इतने बड़े विद्वान, इतने बुजुर्ग, इतने दाढ़ी सफेद हो गए फिर भी बच्चों की तरह खेल रहे हैं, जाके उनको बोलो ऐसे मत खेला करो, टेल देम टू स्टॉप प्लेइंग लाइक चिल्ड्रन, दे आर गिविंग अप देयर ग्रेविटी एंड ग्रेटनेस एज पंडित्स। तो गोपीनाथ आचार्य ने कहा वो तर्क का सूखा सूखा केक जो है ना उसको चूसते आ रहे थे कई दिन से, क्या समझ में आपको आया? दे आर चूइंग द ड्राई केक ऑफ लॉजिक सिंस मैनी मैनी ईयर्स, आज उनको आपकी कृपा से प्रेम रस प्राप्त हो गया है, और आपकी कृपा का एक जो बिंदु है वो तो सुमेरु और मंदार पर्वत को भी डुबा सकता है, ऐसी आपकी कृपा इन दोनों पर हुई है, रामानंद राय की कोवूर में हुई है, और सार्वभौम भट्टाचार्य पे कहां पे हुई है? श्वेत गंगा उनके निवास स्थान पर हुई है, इसलिए आज उनको भक्ति का अमृत बिंदु प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो बालक बनकर खेल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंदित हो गए इनका, क्योंकि उनको यही प्रकट करना था कि अगर हम किसी भी ऐश्वर्य से युक्त होंगे और उसके वजह से ग्रेव गंभीर और बड़े विद्वान और बड़े उच्च पदस्थ होंगे, फिर भी जब भगवान की कृपा होती है तो हमारा हृदय बालक जैसा बन जाता है, वो सारा ज्ञान का पद का सारा जो गर्व अहंकार होता है वो नष्ट हो जाता है और हृदय में भक्ति के फूल खिलते हैं। ये सब लीला होने के पश्चात क्या किया, सब भक्त लोग फिर जोड़ी जोड़ी बने थे ना, वो सब बड़ा सर्कल बनाया और फिर चैतन्य महाप्रभु बीच में गए। उन्होंने अद्वैताचार्य को बुलाया और मन से संकेत किया उनको। अद्वैताचार्य कौन है और कौन है? सदाशिव भी है वो, लेकिन इस समय अद्वैताचार्य ने भगवान के संकेत के अनुसार शेष नाग का स्वरूप धारण किया और वो पानी पे सरफेस पे तैरने लगे शेष नाग के भाव में और रूप में। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर विष्णु के भाव में विराजमान हो गए। बहुत देर तक उन्होंने शेष शाही भगवान का दर्शन सब लोगों को दिया इंद्रधनुष सरोवर के बीच में। इस तरह से इंद्रधनुष सरोवर की लीला समाप्त होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आखिर बात आपको बताना जरूरी है एक मिनट के अंदर, वो ये है कि गुंडीचा महारानी पर भगवान का इतना प्रेम था कि एक बार गुंडीचा महारानी को पैर में कांटा लगा तो जगन्नाथ भगवान ने उनका चरण कमल अपनी छाती पर लगाया, बड़े ही प्रेम से अपने हाथ से उसका पैर का कांटा निकाला। उसका दर्शन उसके किनारे में है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान गुंडीचा महारानी का पैर का कांटा निकाल रहे हैं। इसके सामने ही इंद्रधनुष महाराज का भी मंदिर है, दोनों का सामने मंदिर है। और उसके पहले आप जब उतर रहे हैं तो एकदम लास्ट में दोनों मंदिर हैं ऑपोजिट, लेकिन उसके पहले लेफ्ट में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। वो जनरली लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी में पंचशिव और पंचतीर्थ बहुत प्रसिद्ध है और पंचशिव और पंचतीर्थ इनका दर्शन करने से जगन्नाथपुरी का दर्शन परिपूर्ण हो जाता है। तो ये पंचशिव कौन है? एक है जगन्नाथ मंदिर के पास में ही है कपाल मोचन महादेव, एकदम जगन्नाथ मंदिर के पास में है, व्याघ्र गेट और अश्व गेट के बीच में जो कोना है ना, ऐसा ऐसा और ऐसा जो कोना है ना, ये व्याघ्र गेट है, ये अश्व गेट है, इसके कोने के सामने ही कपाल मोचन महादेव का मंदिर है। उसके बाद लोकनाथ महादेव, राम भगवान जब आए थे तो उनको शिवलिंग नहीं मिला पूजा करने के लिए, तो एक लौकी, हाँ लौकी जो शिवलिंग के रूप में थी उनका उन्होंने सेवा किया, तो लोकनाथ लोकनाथ बन गए बाद में। तो पहले कपालमोचन महादेव, फिर लोकनाथ महादेव, फिर उसके बाद में मार्कंडेयेश्वर महादेव और उसके बाद में यमेश्वर महादेव और लास्ट में नीलकंठेश्वर महादेव, ये पंचशिव है। और एक समय पर द्वापर युग में जब पांडव लोग वनवास कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर आकर जगन्नाथ जी से संकट से मुक्त होने के लिए प्रार्थना किया था, तो इन पांच शिवलिंगों की स्थापना उनके भाव में की गई है, इसलिए उनको नाम भी पांडवों के दिए हैं। जैसे यमेश्वर महादेव को युधिष्ठिर माना गया है और नीलकंठेश्वर को सहदेव माना गया है। और पंचतीर्थ कौन से हैं गिनेंगे? एक है महोदधि समुद्र, दूसरा है श्वेत गंगा, तीसरा है मार्कंडेश्वर महादेव, चौथा है रोहिणी कुंड और पांचवा है इंद्रदुम्न सरोवर। अरे वो तो आपको आज के दर्शन में एक तीर्थ और एक महादेव दोनों का दर्शन होगा, इसलिए उनका दर्शन बड़े सावधानी से और भाव से करना। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री राधे श्याम जगन्नाथपुरी धाम की।